कबीर की दार्शनिक विचारधारा, डॉक्टर विपिन कुमार। चिंतन मनुष्य के व्यक्तित्व का सबसे प्रधान गुण है, जो उसे विश्व के अन्य प्राणियों से अलग करता है। इसी गुण के कारण मनुष्य अपने को विवेकशील कहता है। विवेक के बल पर ही वह दृश्य एवं अदृश्य जगत के सामने सवाल खड़े करता है और उनके जवाब ढूंढता है। दृश्य जगत क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? ब्रह्म क्या है? वह है या नहीं? यदि है तो उसके अस्तित्व का क्या प्रमाण है? आत्मा क्या है? जीव क्या है? जीव क्यों मिला है? काल क्या है? मुक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? ये ऐसे विवेकजन्य प्रश्न हैं जिनके जवाब मनुष्य सदियों से ढूंढता आ रहा है। कबीर भी ऐसे ही चिंतक हैं, जिनका समूचा काव्य इन प्रश्नों के जवाब से भरा पड़ा है। उन्होंने समस्त दार्शनिक बिंदुओं पर अपना विचार व्यक्त किया है। ब्रह्म। कबीर ब्रह्म को अनेक नामों से संबोधित करते हैं, जो उन्हें भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक संस्कारों से मिले हैं। उन्होंने ब्रह्म को राम, हरि, गोविंद, निरंजन, केशव, नारायण, जगजीवन, माधव, मुकुंद, महादेव, गोपाल, शालिग्राम, रघुनाथ, सहज, शून्य, विशंबर, नरहरि, बिहुला, मुरारी, करीम, रहीम, अल्लाह आदि नामों से अभिहित किया है। उन्होंने ब्रह्म को चाहे जितने नामों से पुकारा हो, वह निर्गुण और निराकार है। वह अव्यक्त है। वह कभी भी अवतार नहीं ग्रहण करता। वह सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में व्याप्त है। वह सभी में एक ही है। वह किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। उसके यहाँ न कोई पंडित है और न कोई योगी है, न कोई राजा है, न कोई रंक है, न कोई वैद्य है, न कोई रोगी है। सभी के अंदर एक आत्मा है। वही आत्मा ब्रह्म का एक अंश है। जब विविध भांड गढ़े जाते हैं, तब ब्रह्म उनमें अंश रूप में विद्यमान होकर उसे संचालित करता है। समस्त प्राणी उसके लीला यश का गान करते हैं, फिर भी उसके रूप का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। व्यापक ब्रह्म सबरी में एक है, को पंडित को जोगी, राणा रंग कवन सु कहिए, कवन वैद्य को रोगी, इनमय आप सब हिनमय, आप सु खेलाय, नाना भांति घड़े सब भाणय, रूप धरी धरी माइल है, सोच विचार सब जग देख्या, निर्गुण कोई न बटावय, कहें कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गाम है। ब्रह्म वर्णन का नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। वह गूंगे के सरकरा के समान है, जिसका वर्णन संभव नहीं है। वह ज्योति का पुंज है, आनंद की मूर्ति है, अनंत रंग है। वह छल बल से दूर है, या यूं कहें वह अवर्ण है, एक है, अकल है और अविनाशी है। उसका न तोल है, न मूल्य है, न कुमाप है, न उसकी गिनती का ज्ञान हो सकता है, न वह भारी है, न हल्का है, न तो उसकी परख कोई देख सकता है। लोधा है कहूँ लाधा है, ताकि बारिश को लहें, अवरण एक सकल अविनाशी, घट घट याप रहें, तोल न मोल माप कछु नाही, गिणंत ज्ञान न होई, नासो भारी नासो हल्का, ताकि बारिश लसय न कोई। ब्रह्म के प्रकाश का अनुमान करना संभव नहीं है। वह अनुमान और उपमा से परे है। वह प्रकाश लौकिक जगत से कहीं ऊपर का है। वह मन और बुद्धि के द्वारा अगम्य है, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है। वह पाप पुण्य और धर्म अधर्म से ऊपर है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कभी कूँ शोभा नहीं देख्या ही परमान, अगम अगोचर गमी नहीं तहाँ जगमग ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी तहाँ पाप पुण्य न छोती। वह आवरण रहित है। वह संपूर्ण जगत से परे एवं भिन्न है। वाणी और वेद ब्रह्मा का विश्वास है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन ब्रह्म शंकर द्वंद, अंजन गोपी संगोव्यंद, अंजन वाणी वेद अंजन किया नाना भेद, कहें कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाणी निरंजन लागे। इस तरह कबीर का ब्रह्म समस्त सांसारिक विकारों से दूर है। वह अनंत प्रकाश है। अनंत प्रकाश के अनंत सुख है। यही अनंत सुख ही प्रत्येक पिंडधारी का लक्ष्य है। यह अनंत सुख प्राप्त हो जाने पर पिंडधारी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और अपने ब्रह्म रूप को धारण कर लेती है। जीव अर्थात आत्मा। ब्रह्म, आत्मा और जीव में कोई तात्विक भेद नहीं है। आत्मा मूल रूप से ब्रह्म का अंश है। जब वह शरीर धारण करता है, तब वह जीव कहलाता है। जीव संसार के कर्मों में भाग लेता है, इसलिए उसे कर्ता कहते हैं। सुख दुख की अनुभूति कर्ता को होती है। वह कर्म नियम के अधीन है। उसके कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण वह पुण्य और पाप का भागी होता है। कबीर कहते हैं कि यही जीव जगत में भ्रमण करते हुए अपने मूल की तलाश करता फिरता है। कौन देश कहाँ आइया, कहूँ क्यों जाइया जानिया जाए, ऊह मार्ग पावे नहीं, भूले पड़े इस माय। संसार के सभी जीव संयोगवश ही एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। जिस तरह से नदी में चलने वाले नावें विभिन्न स्थानों से आकर संयोगवश एक जगह मिल जाती हैं, उसी तरह संसार में व्यक्ति भी मिल जाते हैं। माई बिराणी बाप बिर, हम भी मंझ बिरा, दरिया केरी नाव जू संयोगे मिलिया। जीव सांसारिक स्वार्थों में फंसा हुआ है, जबकि उसका लक्ष्य अपने मूल स्थान ब्रह्म की प्राप्ति है। वह विषय वासना को छोड़कर ही अपने मूल को प्राप्त कर सकता है। आप स्वस्थ मेंद की भगत सवारथ दास, कबीरा राम सवारथी जिन छाणी तन की आस। कबीर ऐसे सांसारिक एवं विषय वासना प्रिय जीव को हद जीव कहते हैं। वे हद जीव से सचेत रहने की बात करते हैं। हद जीव को अपने अंतर्मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जो जीव सांसारिक सीमाओं में नहीं बदते वे बेहद जीव होते हैं। वे जीव ब्रह्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। बेहद जीव से ही अपने हृदय की बात करनी चाहिए, वही मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। कबीर हद के जीव सु हित करी मुखान बोली, जे लागे बेहद सु तिन सु अंतर खोली। हद जीव संकामी होती है, वह कल की कामना करता है। बेहद जीव निकम्मा ही होता है, वह फल की कामना नहीं करता। जब लग भगति च कामता, तब लग त्रिफल सेव, कहें कबीर वाई क्यों मिलाएं निःकामी निज देव। कबीर शरीर को नश्वर मानते हैं। एक दिन यह नष्ट हो जाता है। प्राणी को मानुष शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। मानुष शरीर में रहकर प्राणी वे सारे कर्म करता है जिससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारम्बार, तरवर थे फल झाणी पड्या, बहुरी न लागे डार। कबीर हरि की भक्ति करी तजी बिपिया रस चोज, बार बार नहीं पाइये मनीषा जन्म की मौज। कबीर यहूँ तन जात है, सबय तो ठाहर लाए, कै सेवा करी साध की कै गुण गोविंद के गाय। जब जीव अपना अहम छोड़कर ब्रह्म में निष्ठावान हो जाता है, तब उसका द्वैत समाप्त हो जाता है और वह संपूर्ण दारिद्र एवं दुख से मुक्त हो जाता है। मेरे मिटी मुक्ता भया, पाया ब्रह्म विशास, अब मेरे दूजो को नहीं एक तुम्हारी आस। जाके दिल में हरि बसे, सोनर कल्पय काय, एकल हरि संबंध की दुख दलिद्र सब जाए। इस तरह स्पष्ट है कि जीव ब्रह्म का ही अंश है। वह अपने मूल रूप को भूलकर सांसारिक विषयों में अनुरक्त है। जब तक वह अपने मूल को पहचान कर उसकी ओर अग्रसर नहीं होता, तब तक वह दुख दर्द से ग्रसित रहेगा। माया। कबीर संपूर्ण ज्ञात जगत को माया कहते हैं। वह ज्ञात जगत क्षणिक है। ब्रह्म के ज्ञान के अभाव में यह शाश्वत लगता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर यह ब्रह्म दूर हो जाता है। माया की कल्पना सर्वथा शंकर के अद्वैत वेदांत में की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शंकर के दर्शन में माया के छह रूपों का अंकन किया है। विश्व स्वतः अपनी व्याख्या करने में असमर्थ है, इसके फलस्वरूप विश्व का परतंत्र रूप दिख पड़ता है, जिसकी व्याख्या माया द्वारा हुई है। ब्रह्म और जगत के संबंध की व्याख्या के लिए माया का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म विश्व का कारण कहा जाता है। ब्रह्म का जगत में दिखाई पड़ना भी माया कहा जाता है। ईश्वर में अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति निहित, जिसे माया कहा जाता है। ईश्वर की शक्ति का रूपांतर विश्व के रूप में होता है, जिसे माया कहा जाता है। कबीर ने लगभग इसी रूप में माया को पहचाना है। यह सत्कर्मों से विमुख करती है, यह पापिन है, सारा संसार इसके फंदे में फंसा है। यह जीवों में तृष्णा पैदा करती है, जीवों को भगवान से विमुख करती है। यह मोहिनी है, यह ज्ञानी और बुद्धिमानों को भी मोहित कर लेती है। यह संत की दासी है, यह जीवों में आशा का संचार करती है। यह डाइन है, सभी सांसारिक व्यक्तियों को खा जाती है। यह सात सत्वादि तीन गुणों का वृक्ष है, इसकी शाखाएं दुख और संताप से निर्मित है। यह त्रिगुणात्मक बदली है, यह अंधकार में यह ज्ञान रूपी काली कंबली है। इसने संसार में सभी को अज्ञान की श्रृंखला से बांध रखा है। माया के इन रूपों को बताते हुए कबीर ने उससे छुटकारा पाने को कहा है। माया आदर माया मान, माया नहीं तहां ब्रह्म ज्ञान, माया रस माया कर जान, माया करनी तजय परान, माया जब तब माया जोग, माया बांधे सब ही लोग, माया जल थली माया काशी, माया प्यापी रही चौपासी, माया माता माया पिता असि माया अस्तरी सुता, माया मारी करें व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। जगत सृष्टि संसार, जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है, ईश्वर की अव्यक्त शक्ति माया है, अपनी इसी अव्यक्त शक्ति से ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, जगत ईश्वर की संरचना है और अंततः वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। ईश्वर जगत का पालन करता है एवं विनाश करता भी है। संपूर्ण लौकिक वस्तुओं का निर्माण वह समय समय पर करता रहता है। शंकराचार्य ने भी माना है कि सर्वप्रथम ईश्वर से पांच सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव होता है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। पांच स्थूल भूतों का निर्माण पांच सूक्ष्म भूतों का पांच प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। कबीर ने बार बार सत, रज, तम इन तीन गुणों और आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी इन पांच तत्वों से संसार के रचे जाने की बात कही है, किंतु इन तत्वों से घटित ब्रह्मांड और पिंड को वे नश्वर मानते हैं। यहूं ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, तीन दस के व्यवहार को झूठे रंगीन भूल। असंसार अथा सागर है, इस संसार रूपी सागर से पार होना बहुत कठिन है, इसका एकमात्र उपाय ईश्वर स्मरण है। संसार सागर विषम वर्णा, सुमिर लय हरि नाम, कहे कबीर तहां जाई रहना, नगर बसत निधान। इस संसार में असीम दुखों का अंबार है, इसमें चारों तरफ भूख और अभाव ही व्याप्त है। अल्लाह या राम की कृपा के बगैर इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। दुनिया भंडार दुख का भरी मुहामुह भूष, अदया अलह राम की सोना समा शरीर। यह संसार असार है, इसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं है, यह व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप कभी कड़वा और कभी मीठा प्रतीत होता है। कबीर यहूँ जुग कुछ नहीं, बिना पारा बिन मीठ, काली जू बैठा मालिया आज मसाणा दीठ। यह संसार माया मोह के जल से पूर्ण है और शरीर कागज की नौका है। कागद केरी नावरी पाणी केरी गंग, कहें कबीर कैसे तिरूं पांच कुसंगी संग। अंततः कबीरदास जी इस संसार सागर से उबरने का रास्ता भी बताते हैं। वे कहते हैं कि सारा संसार माया की आग में चल रहा है, इस लोभ मोह के आकर्षण में जलने से अच्छा है कि त्राही त्राही करके ईश्वर का स्मरण करो और साधु संगति करो। इसके अलावा अन्यत्र कहीं भी सुख शांति नहीं, ईश्वर का नाम ही संपूर्ण दुख को मेटने वाला है। ईश्वर इस संसार में सारा वस्तु है, यही संसार सागर से पार करने का साधन है। माया मोह और जग आगी, तासंगी जरसी कवन रस लागी, त्राहिताई करी हरि पुकारा, साध संगति मिल करहूं बिचारा, रेरे जीवन नहीं विश्रामा, सब दुख मंडन राम को नामा, राम नाम संसार में सारा, राम नाम भवतार नहारा। काल, ईश्वर की दो अभिव्यक्ति शक्तियां हैं, माया और काल। माया अपने आवरण और विक्षेप गुणों से भौतिक संसार का निर्माण करती है, काल अपनी ग्रास शक्ति से इस मायावी संसार को ग्रस लेता है। काल एक और अकल है, यह व्यापक और अव्यक्त है। भौतिक संसार में यह समय नाम से अभिहित किया जाता है। मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में इसे दिन महीना वर्ष आदि में विभक्त कर लिया है। कबीर ने काल को पल बाज जम लुहार मरण खटिक सर्प आदि नामों से पुकारा है, इसके कर से कोई भी नहीं बच पाया है, एक एक कर सबको उसने शिकार बना लिया है। कबीर बारी बारी अपनी चले प्यारी मात, तेरी बारी रेजिया नीड़ी आवे नंत। हमारा जीवन पानी की बूंद की भांति क्षणभंगुर है, जिस तरह प्रातःकाल होते ही तारे छिप जाते हैं उसी तरह एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पाणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जात, एक दिन छिपी जाही है तारे जो प्रभात। लोग अवास्तविक सांसारिक सुख को सुख मानते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं, जबकि संसार ही काल का चरबण है, जो कुछ उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक चबीड़ा काल का, कुछ मुख में मैं कुछ गोद। इसलिए ईश्वर का स्मरण ही सार्थक है। अन्य सभी कार्य जंजाल अर्थात बंधन में डालने वाले हैं। आदि से अंत तक जो कुछ भी है वह काल के कब्जे में है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सौ दिया दूजा देखो काल। मोक्ष, मोक्ष भारतीय जीवन दर्शन की वह अवस्था है जिसमें जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस अवस्था से पहले जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आत्मा मूल रूप में ब्रह्म का अंश है। शरीर के साथ असक्त होने पर बंधन युक्त हो जाती है और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगती है। यही बंधन है। बंधन युक्त आत्मा ही जीव है। जीव जन्म मरण के चक्र में आबद्ध है। इस चक्र में जीव को हर पल दुख का सामना करना पड़ता है। प्रश्न उठता है, दुख कहाँ से आता है? इस प्रश्न का सामना आदि से आज तक के सभी मनुष्यों को करना पड़ा है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक समाधान हमारे सामने नहीं आया है। कबीर मनुष्य की भौतिक वासनाओं को दुख का कारण मानते हैं। उनके अनुसार जब तक मनुष्य में भौतिक वासनाएं विद्यमान हैं, तब तक वह दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। इससे छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आत्म तत्व को पहचानना होगा और भौतिक वासनाओं से अपने को दूर रखना होगा। जब वह इन वासनाओं से दूर हो जाएगा, तब वह सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति ही मोक्ष है। भूखा भूखा क्या करे, कहाँ सुनावे लोग, भाड़ा छाणी जे मुख दिया स्वयं पूर्ण जोग। यह संसार और शरीर ही मनुष्य के दुख का कारण है। इसको त्याग देने में ही जीवन की सार्थकता। जो जीवित रहते हुए इसे त्याग देता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की शरण में चला जाता है, अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। जीवन मृतक हमें रहे, तजय जगत की आस, तब हरि सेवा आपण करे, मति दुख पावे दास। इस तरह कबीर का दार्शनिक चिंतन उनके सामाजिक एवं धार्मिक चिंतन की तरह सामयिक था। यदि हम इतिहास की गहराइयों में नजर डालें तो इस तरह का चिंतन होना स्वाभाविक लगता है। तत्समय अर्थ एवं शक्ति ही जीवन का लक्ष्य बन चुका था। इसी के लिए मनुष्य पानी छोड़ खून का प्यासा बन चुका था। जनता जाति धर्म में विभाजित हो चुकी थी। जनता मंदिर मस्जिद में अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश रही थी। मंदिर मस्जिद भी बाह्याडंबर एवं कर्मकांड के घेरे में फंस चुके थे। ऐसे में कबीर ने सामान्य जनता को मुक्ति का निर्गुण मार्ग दिखलाया, जहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। ब्रह्म सबके अंदर विद्यमान है। जरूरत है तो उसको पहचानने की, आत्मनियंत्रण से ही उसको पहचाना जा सकता है।